آپ سب کا آج کے اس ٹاک شو میں ہاردک ابھینندن ہے. میں آج کے ٹاک شو کے جو ہمارے پینلسٹ ہیں میں ان کا پریچے دینا چاہوں گا, اور ساتھ میں ہمارے کرونا بھائی صاحب ہمارے جو آئے ہیں, کرپیا ایز اے چیئر پرسن پلیز ٹیک یور چیئر. ہماری ایشوریہ ودھی انوسار کسی بھی کاریکرم کا آرمبھ ہم ایشوریہ سمرتی سے کرتے ہیں, تو آج ہمارے بیچ رشید گپتا ہیں, وہ ہمیں ایک ایشوریہ گیت سنائیں گے اور ہم اسی گیت کے ساتھ ساتھ شیو بابا کو پیار سے یاد کریں گے, پھر ہم آگے کا کاریکرم سٹارٹ کرتے ہیں. رشید گپتا.
وہ میرا بابا ہے, وہ میرا بابا ہے, وہ میرا بابا ہے, وہ میرا بابا ہے. جان کی راہیں دکھلاتا, آتم دیپوں کو ہے جلاتا, پاون وہ بناتا ہے. وہ میرا بابا ہے, وہ میرا بابا ہے, وہ میرا بابا ہے, وہ میرا بابا ہے.
سبھی تالیوں کے ساتھ کلیپنگ کریں گے پلیز.
دور وطن کا رہنے والا, میٹھے بچے کہنے والا, دور وطن کا رہنے والا, میٹھے بچے کہنے والا, کرونا پریم دیا کا ساگر, کرونا پریم دیا کا ساگر, دل میں اپنے بساتا ہے. وہ میرا بابا ہے, وہ میرا بابا ہے, وہ میرا بابا ہے, وہ میرا بابا ہے. پلکوں پر ہم سب کو پالے, جیون نیا وہ ہے سنبھالے, پلکوں پر ہم سب کو پالے, جیون نیا وہ ہے سنبھالے. لے پتوار ہاتھوں میں بابا, لے پتوار ہاتھوں میں بابا, منزل تک لے جاتا ہے. وہ میرا بابا ہے, وہ میرا بابا ہے, وہ میرا بابا ہے, وہ میرا بابا ہے. خوشیوں کے ہمیں رنگ ہے دیتا, ہمیں ڈھنگ ہے دیتا, خوشیوں کے ہمیں رنگ ہے دیتا, جینے کا ہمیں ڈھنگ ہے دیتا. مانو سے ہمیں دیو بنا کر, मानव से हमें देव बनाकर धरती पर ले जाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है।
थैंक यू सो मच। ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत थैंक्स रशीद का। आज के हमारे जो पैनलिस्ट हैं, मैं उनका परिचय पहले आपको देना चाहूंगा। आज के हमारे टॉक शो के पैनल के चेयरपर्सन आदरणीय राजयोगी करुणा भाई साहब, जो कि ब्रह्मा कुमारीज के चीफ मीडिया हैं। ब्रह्मा कुमारीज के जो भी हमारे चैनल्स आप देखते हैं, पीएम टीवी का या और भी वो जो चैनल्स हमारे हैं, सारा मल्टीमीडिया और मीडिया का आप चीफ हैं। पिछले तकरीबन 5 दशकों से आप ब्रह्मा कुमारीज के में समर्पित होकर के ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं। ये हमारे मैनेजिंग कमेटी के भी मेंबर हैं, तो मैं आपका आज के इस पैनल में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ में हमारी देवयानी बहन, शी इज अ सीनियर आर्किटेक्ट अर्बन आर्ट्स फ्रॉम हैदराबाद। आप भी ब्रह्मा कुमारीज में तकरीबन पिछले 2-2.5 दशकों से समर्पित हैं। आपका भी राजयोगा का और स्पिरिचुअल लाइफ का बहुत अच्छा अनुभव है, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। आपका भी आज के पैनल में बहुत बहुत अभिनंदन है। इसके साथ हमारे बीके लाजवंती बहन, शी इज अ सीनियर राजयोगा टीचर फ्रॉम मुलुंड बॉम्बे। वो भी काफी समय से राजयोग का अभ्यास करते हैं और हमारी सीनियर टीचर हैं। आपका भी आज के पैनल में हम अभिनंदन करते हैं। साथ में हमारी वसुधा बहन, वो भी एक साइंटिस्ट ही रह चुकी हैं, अब वो आफ्टर रिटायरमेंट, शी इज नाउ सीनियर राजयोगा टीचर इन माउंट आबू इटसेल्फ। हमारे जो शिवमणि होम है फॉर सीनियर सिटीजन्स, आप वहां पर ही एज ए सीनियर राजयोगा टीचर हैं, तो आपका भी आज के इस पैनल में हार्दिक अभिनंदन है। इसके साथ साथ आप जो आज हम देख रहे हैं कि फर्स्ट डे और आज डे की आज जो ऑडियंस है, आप उनमें से वो भाग्यशाली हैं जिसे कि गीता में भी कहा, कोटों में कोई और कोई में भी कोई, कोटों में कोई और कोई में भी कोई, जो अंत तक आप यहां पर हैं, आप बहुत 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 भाग्यशाली हैं। तो आप अपने लिए भी अभिनंदन और तालियां बजा सकते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा जो डिले हुआ ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, उसके लिए रिग्रेट है। हमारे पास अबाउट 60 मिनट्स हैं फॉर दिस शो नाउ। हम इस शो को 2 सेशंस में करेंगे। ये शो, टॉक शो जो है, बेसिकली दिस इज एक्सपीरियंस ओरिएंटेड। हमारे पास जितने भी पैनलिस्ट हैं डिफरेंट फील्ड से हैं, स्पिरिचुअल फील्ड से भी हैं, अपने लौकिक फील्ड से भी हैं, प्रोफेशनल फील्ड से भी हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस, अगर हमें खुशनुमा जिंदगी जीनी है, तो हमारे वर्क और लाइफ में कैसे बैलेंस रखें, चाहे हम घर में काम कर रहे हैं, चाहे समाज की सेवा पे हैं, प्रोफेशन में हैं, कहीं पर भी हैं। आपने एक चीज नोट की होगी, जितने भी हमारे स्पीकर्स थे इस कॉन्फ्रेंस में, दे वर ऑल फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशनल फील्ड्स। दोज हु आर प्रैक्टिसिंग राजयोगा इनटू देयर प्रोफेशनल एंड प्रैक्टिकल लाइफ। तो आज हम उनसे अपने जीवन में वो कैसे बैलेंस रखते हैं, चाहे वो घर पे हैं या कहीं पर भी हैं, वो अनुभव उनसे सुनेंगे। फिर बाद में आज के हमारे जो माननीय चेयरपर्सन हैं, वो अपना अनुभव और उसके साथ साथ वर्क लाइफ में हम कैसे अपने को बैलेंस रखें उसकी गाइडेंस भी हमें देंगे। तो मैं सबसे पहले दिव्यानी बहन जो कि आर्किटेक्ट हैं, आपको 5 मिनट हैं, आप हमें अपनी लाइफ से विद सम सक्सेस स्टोरी, शॉर्ट सक्सेस स्टोरी, अगर आप एक्सप्लेन करें कि आप अपने लाइफ में, आप फैमिली में रहते हैं, घर गृहस्थ में हैं, प्रोफेशन में भी हैं, तो आप वर्क लाइफ में कैसे बैलेंस रखते हैं, 5 मिनट्स।
अभी 3-4 दिनों में हमने यही देखा है ना कि मैनेज कैसा करना है, आइदर माइंड मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, और घर और ऑफिस, क्योंकि घर में भी वैसे बोला जाता है कि माँ जो होती है वो तो होम मिनिस्टर ही होती है, पत्नी जो होती है होम मिनिस्टर उसका ही चलता है, फिर ऑफिस में, मेरे ऑफिस में भी मैं बॉस हूँ, इसलिए दोनों तरफ मेरा चलता है, और डिसिप्लिनरी होने की वजह से बहुत स्ट्रेस निर्माण मुझे भी होता था और मेरे कलीग्स को भी होता था, घर में भी होता था, तो सब इतने अशांत हो जाते थे और मैं भी बहुत दुखी हो जाती थी। लेकिन इसका जब मैंने राजयोग का अभ्यास शुरू किया तब मुझे टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि टाइम बस नहीं होता था, दोनों कर्म क्षेत्र में काम करने के लिए टाइम मुझे बस नहीं होता था, अब इसकी वजह से क्या हो गया, मुझे टाइम मैनेजमेंट आ गया, क्योंकि हमें सवेरे जल्दी उठना, ये हमारे इस राजयोग की पढ़ाई में है, सवेरे जल्दी उठना। पहले हम जो उठते थे 6-6:30 बजे उठती थी मैं, और उसकी वजह से क्या होता, पूरा सब कुछ डिले हो जाता था और अपना गुस्सा दूसरों के ऊपर उतारना होता था, उसकी वजह से सारे दुखी हो जाते थे। अब 4 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठने की वजह से सब टाइम अपने परफेक्ट काम हो जाता है, जो हम आज का अभ्यास करते हैं उससे भी हमें शक्ति तो मिलती ही है, और सारे दिनचर्या में क्या क्या कब करना है ये भी हमें पता पड़ता है। ऑफिस जाने के बाद भी वही जो मन को पद्धत अभ्यास की पड़ गई है उसकी वजह से पूरा टाइम शेड्यूल हो जाता है और डिसिप्लिन में भी रहता है। एक तो टाइम मैनेजमेंट आ गया और फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट भी, स्ट्रेस जो निर्माण होता है वो टाइम रिलेशनशिप अगर मैनेज नहीं हुई तो ही होता है, और अपने आप फिर रिलेशनशिप में जब हमें ये भगवान के सवेरे सवेरे महावाक्य सुनने को मिलते हैं कि हमें कैसा बिहेव करना है, आज भी भगवान ने कहा है कि किसी को यानी दैवी गुण अपने में धारण करना है, तो दैवी गुण यानी क्या, देवताओं के जो गुण है वही हम दिखते हैं, हर्षित मुक्तारण, पहले जो चेहरा था हमेशा गुस्से वाला वो उसमें फर्क आ गया। तो जो हम सवेरे सुनते हैं, और रोज मैं सवेरे सुनने को जाती हूँ, क्योंकि टाइम जो है हमारा अभी मुझे उसी टाइम में मैं सब कुछ कर सकती हूँ, सवेरे मुरली सुनने को जाती हूँ, महावाक्य सुनने को जाती हूँ, और 10 बजे मेरा ऑफिस शुरू होता है, उसके पहले घर का भी मेरा पूरा काम हो जाता है, 10 से 5:30 तक मेरा ऑफिस रहता है, अभी भी मैं वही काम करती हूँ, और फिर साइट, मेरे साइट सुपरविजन भी होता है, साइट पे भी जाती हूँ, वहां पे भी बहुत बार ऐसा होता है कि वर्कर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स की गलती भी होती है, हमारी ड्राइंग्स प्रमाण नहीं भी होता है, तो पहले गुस्सा आ जाता था, अब माइंड थोड़ा कंट्रोल में हो गया है, माइंड शांत हो गया है, और पहले बोलने के पहले जैसे सोचते हैं, तो यही सिखाया जाता है यहाँ कि बोलने के पहले सोचो, करने के पहले सोचो और फिर बोलो और करो, तो वो जो, और रोज रोज वो सुनने की आदत होने की वजह से वो हमारे मन पे परिणाम होता है, और वही देखा गया है कि परिवर्तन जो हमारे में आता है रोज रोज ये पढ़ाई करने से होता है, और भगवान की जो ताकत मिलती है उससे होता है। अब सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ जो भी होते हैं ऑफिस में या घर में, तो वो सभी उनको भी समझ में आ गया कि इसमें कितना परिवर्तन आ गया है, सहनशीलता बढ़ गई है और समाने की शक्ति भी आ गई है, और एक जैसे भगवान कहता है सारे मेरे बच्चे हैं, तो उसमें एक तो आत्मिक दृष्टि भी आ गई है, विशाल दृष्टि बन गई है, और एक मजे की बात ये बताती हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं, मेरे बेटे ने जापानी गुड़िया से शादी की है और बेटी ने डेनिश बॉय से शादी की है, लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये मेरे नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम की ये जो सच्ची परिभाषा है ये मुझे अब समझ में आ गई है। तो बाबा बोलता है ना कि सारे बच्चे मेरे बच्चे हैं, सारी आत्माएं मेरे बच्चे हैं। तो उस हिसाब से मुझे अब किसी में फर्क नहीं नजर आता, यानी आत्मिक दृष्टि आने की वजह से नजरिया बदल गया। और इसके वजह से क्या हो गया, स्ट्रेस पूरा चला। नहीं तो अगर मैं साधी होती, यानी इसमें अगर नहीं आती तो मुझे बहुत स्ट्रेस निर्माण होता था कि अरे मेरे बेटे ने ऐसा किया, क्या कर दिया, मेरी बेटी ने ये क्या कर दिया, मुझे समाज क्या, दुनिया वाले क्या कहेंगे। अब वो मुझे नहीं लगता कि दुनिया वाले क्या कहेंगे। मैं दुनिया, कभी हम हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं, हमारे लिए खुद के लिए कभी नहीं जीते। यहां आके मैंने ये सीखा है कि खुद के लिए भी जियो, खुद के लिए भी थोड़ा समय निकालो। तो ये, और अभी देखो हम दो परसों ही सब स्टेज पे आके भी नाच रहे थे, नीचे भी नाच रहे थे, हमारा बचपन फिर से वापस आ जाता है। देखो मैं इतनी, मेरी उम्र है अभी 67, तो इतनी होके भी मैं भी अभी भी मुझे लगता है कि मैं बच्ची हूँ, क्योंकि वो हमेशा बोलता है ना बच्चे, मेरे बच्चे, बच्चे। और हमारे सेंटर पे हम हर त्योहार मनाते हैं, और हर त्योहारों में हम नाचते हैं, गाते हैं, खुशियां मनाते हैं। अगर हम बाहर जाएंगे, यहाँ तो पद, पोजिशन, आयु सब हम भूल जाते हैं, और ये जो बचपना आ जाता है उससे खुशियां आ जाती है। ये जो अंदर की खुशी है ना, वो बाहर फिर उमड़ते आती है, और फिर सारा दिन हमारा उमंग उत्साह होता है। ऐसे असल में हमारे साइट पे बहुत बार ऐसा हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है, कोई काम बराबर नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्टर्स बराबर टाइम, क्योंकि टाइम बाउंड होते हैं हमारे सारे प्रोजेक्ट, टाइम बाउंड होते हैं। तो ऑफिस में भी जो काम करने वाले होते वो भी डिजाइन टाइम पे नहीं देते, लेकिन अब मैं उनसे प्यार से कर देती हूँ। तो प्यार की वजह से क्या होता है कि सब बराबर करते, वो ज्यादा ओवर टाइम भी करते हैं, खुशी से करते हैं। वैसे साइट पे भी होता है कि सारी कोई, पहले मैं गुस्सा करती थी कॉन्ट्रेक्टर्स को भी वगैरह, लेकिन अब उनको भी ऐसा नजर आया कि ये मैडम में बहुत फर्क हो गया है, वो भी प्यार से सब कुछ काम करते हैं और खुशी से करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, और काम भी इतना अच्छा होता है। अब मुझे दो तीन क्लाइंट्स ने ये बताया कि मैडम अब हमारे बच्चों के लिए भी आप ही बनाइए, क्योंकि हमारे घर में जितनी ऐसी शांति हमें अनुभूति होती है, जो भी हमारे घर में आता है वो बोलता है कि तुम्हारे घर में कितनी शांति लगती है। यानी देखो वो राजयोग का अभ्यास नहीं कर रहे, लेकिन मैं राजयोग का अभ्यास करती हूँ, और मेरे वाइब्रेशन शायद, क्योंकि मैं साइट विजिट करती हूँ तो वहां पे भी जाते होंगे, तो उनका कहने का ये मतलब कि आप जहाँ पे भी जो भी काम करोगे हमारे लिए करो, तो हमारे घर में भी शांति होगी, हमारे बच्चों के लिए भी आप घर बनाइए तो शांति होगी। तो इतना फर्क, यानी हमें मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन दूसरों को वो अनुभव होता है कि ये वाइब्रेशंस फैलते ही रहते हैं। तो ये सिर्फ नजरिया किस लिए बदला, जब मैं राजयोग का अभ्यास करने लगी, और वो भी रोज करना चाहिए। अगर एक दिन छोड़ दिए तो वो अनुभव नहीं, अभ्यास यानी पढ़ाई यानी रोज की होती है ना।
हेलो,
ओम शांति।
एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट आपने बताया, टाइम मैनेजमेंट। राजयोग के अभ्यास में टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए हम सबके पास 24 घंटे हैं, ब्रह्म कुमारी में हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो तीन पार्ट्स में बटा हुआ है, 8 घंटे सोना, 8 घंटे ईश्वरीय कार्य, और 8 घंटे हमारा पर्सनल, प्रोफेशनल, जो भी हमारा कार्य है वो करना है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सोना, उसके ऊपर आपको और थोड़ा डिटेल में मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आदरणीय करुणा भाई साहब से, वो उस एस्पेक्ट को भी वो थोड़ा टच करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्लीप मैनेजमेंट, और उसके साथ साथ हमारे जो बाकी के दो हैं, भगवान ने ये कहा है बच्चे 8 घंटे तुम्हारे, 8 घंटे आराम करो और 8 घंटे तुम मेरे लिए दो। ये टाइम मैनेजमेंट जब हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसके साथ साथ माइंड मैनेजमेंट भी आता है, और भी एस्पेक्ट्स आते हैं इसके साथ साथ। अब हमारे साथ एक साइंटिस्ट भी हैं,
सिस्टर वसुधा, उनका भी साइंटिफिक फील्ड में काफी एक्सपीरियंस रहा है. अब उन्होंने अपनी लाइफ को डेडिकेट कर दिया है फॉर गॉडली कॉज. सिस्टर वसुधा, हम आपसे जानना चाहेंगे विद सम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कि आप लाइफ को कैसे मैनेज करते रहे. अब तो ठीक है कि आप बिल्कुल टोटली सरेंडर्ड है या डेडिकेटेड है ऑन गॉडली सर्विस. बिफोर दैट हाउ यू यूज टू कीप बैलेंस इन योर लाइफ, इन वर्क लाइफ एज वेल एज इन पर्सनल लाइफ. 5 to 6 minutes.
ओम शांति, परम शांति, सुख शांति. थोड़ी नई शुरुआत लगती है ना, सब तीन बार ओम शांति कह के यही रहते. मैंने ओम शांति कह के आपको प्रेजेंट मोमेंट का रियलाइजेशन कराया, परम शांति कह के परम धाम में एक सेकंड के लिए ले गई, सुख शांति कहकर आने वाली सत्युगी दुनिया के लिए नजारे दिखाना शुरू करूंगी. तो अभी भाई जी ने कहा ऐसा कि हैप्पीनेस थ्रू वर्क लाइफ बैलेंस, ये मेरी वर्किंग लाइफ में और आज की लाइफ में मैंने कैसे बैलेंस किया. आपको बताते हुए मुझे इतना तो गर्व होता है कि जब मैं पढ़ रही थी तब से बाबा की बच्ची हूँ, ज्ञान में तो आ गई हूँ. और आज 40 साल के अभ्यास के बाद मुझे ये लग रहा है कि अगर हर कार्य में हम परमात्मा के साथ रहते हैं तो कुछ असंभव नहीं है. बैलेंस की बात आती है तो आज की दुनिया में, यहाँ कॉन्फ्रेंस का टाइटल है खुशनुमा जिंदगी, तो पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज हैप्पीनेस एंड व्हाट इज प्लेजर. प्लेजर मतलब खुशी, हैप्पीनेस सुख का प्रत्यक्ष स्वरूप, हमें हैप्पीनेस खुशियां लगती है. तो इन द वर्ल्ड ऑफ आजकल कंज्यूमराइजेशन है, सब जगह बड़े बड़े मॉल्स बने हैं. अभी देखा जाए तो दिल्ली का एक मुझे एग्जांपल मिला कि 1 माइल लंबा मॉल है, 1 माइल, एंड दैट इज मल्टी स्टोरी. मॉल का जमाना आ गया, इतना कंज्यूमराइजेशन हो गया है कि बात मत पूछो. और फायदा ये रहता है एक ही बार जाओ, हर तरह की चीज वहां मिलती है, आप खरीदी करो, पैसे खर्च करो और What you get is pleasure and fun. एक जगह से अगर आपको खुशी मिल जाती है तो we find another moment to get the pleasure in a different field. वो जो मिलती है that is all short lived, in skin deep. But the thing is कि happiness is lasting process. It's a mental process. तो ये जो happiness है, यहाँ बैठा August audience, मैं नहीं मानती कि 3-4 दिन से जो सुन रहे उनको नहीं पता व्हाट इज हैप्पीनेस. सब समझ चुके हैं, इतने मेडिटेशन सेशंस अटेंड किए ना किए फिर भी सब जानते हैं, क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग जीता तो खुशी के लिए ही है. तो खुशी हैप्पीनेस क्या है, वो दोनों का माइन्यूट डिफरेंस हम समझे उससे आगे बढ़े. खुशी हमारे चेहरे से प्रत्यक्ष हो जाती है, वो कहते हैं हम हर्षित मुख, ये सतो प्रधान स्टेट ऑफ हैप्पीनेस है. उसके बाद आता है हर्षित मुक्ता के बाद चेहरे मुस्कान, स्माइलिंग फेस, ये सतो सामान्य अवस्था आती है. उसके बाद आता है हास्य, थोड़े दांत दिखाई दे, दैट इज रजो प्रधान अवस्था. उसके बाद अगर चला जाए तो लास्ट आती है तमो प्रधान अवस्था, भी इसमें होती है, वो उसे कहते हैं अट्टहास्य, बड़े जोर से ठहाका लगा के हंसना. है तो हंसना ही, लेकिन 4 स्टेज में हमें ये चीज मिलती है, हर्षित मुक्ता, उसके बाद हमारे चेहरे पे मुस्कान, उसके बाद हास्य, उसके बाद अट्टहास्य. ये चारों अवस्था हम में से ऐसा कोई नहीं है कि जो नहीं जानता, हम सब जानते हैं. लेकिन ये छलकता कब है, जब हमारी आंतरिक लाइफ का मतलब है LIFE मीन्स, कल ही सुरेश गुप्ता जी ने डिफाइन किया था, लुक इंटरनली एंड फॉरवर्ड एक्सटर्नली. जो हमारे अंदर है उसे हम पहले डीपली देखें और उसको फिर बाहर लाने का अभ्यास करें. यही जिंदगी है, यही जीना है. मेरे राजयोगी जीवन के अभ्यास में आप भरोसा कीजिए, मैं जो बात कह रही हूँ वो इतनी गहन अभ्यास वाली है कि 18 साल की उम्र में ज्ञान में आ गई, 24 साल की उम्र पे मेरी परमानेंट जॉब हो गई थी, नर्मदा कॉलेज भरूच गुजरात में मैं पढ़ा रही थी। और 10वें ही दिन इतना फैटल कार एक्सीडेंट हुआ कि दैट रेंडर्ड मी विजुअली हैंडीकैप। विजुअली हैंडीकैप मींस आई वाज नो मोर एबल टू सी एनीथिंग। सोचो, पढ़ाने का काम है वो तो ठीक है, 28 दिन के बाद तो आई वाज कॉन्शियस, मतलब इतने समय तक बेहोश ही थी। उस समय भी नींद में उठ के मैं लेक्चर ही लेती थी, और जब दोनों आंखें चली गई तो भी आप यकीन मानिए बाबा मेरे साथ था। वो कैसे कि चूंकि ये एक्सीडेंट का केस था और सीवियर आई इंजरी थी, इसलिए मुझे अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल ऑप्थल्मिक सेंटर में एडमिट किया गया। वहां जो मैट्रन ऑन द टाइम ड्यूटी पे थी, वो तो मुझे 12-11 महीने बाद पता चला कि वो बाबा की बच्ची थी। उसकी ड्यूटी हो ना वो खींची चली आती थी मुझे पूछने कि बेटे दवाई ली, इतना खाया, क्योंकि दिन की 60-60 गोलियां पेट में जाती थी। और यकीन मानिए लेफ्ट साइड तो पूरा पैरालिसिस हो गया था, कोई होप्स नहीं थी लेफ्ट आई को ठीक करने की, क्योंकि पूरा चेहरा ही क्रश हो गया था। राइट आई में थोड़ी होप्स थी, फिर भी मिजरेबली एक के बाद एक 6 ऑपरेशन एक ही डॉक्टर डीआर पटेल, जिसका तो पूरा अपना विजिटिंग कार्ड भर जाए इतनी डिग्रियां, फॉरेन से डिग्री लेने वाले सब अनसक्सेसफुल हुए। लेकिन परमात्मा की मदद देखो, वो इतनी हिम्मत हार गए। लेकिन मैं कहती व्हाई डू यू बॉदर डॉक्टर, आई वुड लर्न ब्रेल लैंग्वेज एंड गो बैक एंड टीच माय स्टूडेंट्स। मेरा इतना हौसला था कि मैं ब्रेल लैंग्वेज सीख के भी मेरे स्टूडेंट्स को जाके पढ़ाऊंगी। एक भी बार आंसू आने का तो नाम ही नहीं, एक भी बार नहीं, क्योंकि मैं ये मानती थी कि 24 साल की उम्र में मेरा इतना बड़ा कर्म भोग चुकतू हो गया, क्योंकि परमात्मा ने हमें ये ज्ञान सिखाया है, दिया है कि हमारे 63 जन्म के विकर्म है, द्वापर युग के 21 और कलयुग के 42, और ये हमारा अंतिम जन्म है जब हमें सब कुछ हिसाब किताब चुकतू करने हैं। तो मैं बड़ी खुश हो रही थी कि यंग एज में इतना बड़ा हिसाब किताब चुकतू हो जाए, वो बड़ी खुशी की बात है। फिर आगे चलते हुए जब 6 ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहे तो माय केस वाज रिफर टू द हेड, दैट 7th ऑपरेशन आल्सो समहाउ रिमेंड अनसक्सेसफुल, और मुझे वो लोग सिविल हॉस्पिटल से छुट्टी दे रहे थे कि घर कल चले जाओ, अब आपको यही जीवन जीना है। मैंने बोला वेल एंड गुड, चलो, मैंने तो ब्रेल लैंग्वेज के वो लेटर्स भी लिख के मंगवा लिए थे, कैसे सीखेंगे। लेकिन परमात्मा का ये काम था, मेरा नहीं, ना आपका ना मेरा, उन्होंने मेरे ही डॉक्टर को टच कराया, डॉक्टर पीएन नागपाल, जो कि अभी भी है, उनका बहुत उनके हाथ में जश है। उन्होंने फाइनल ऑपरेशन के लिए मुझे अपॉइंटमेंट भी दे दी, और विद इन अ वीक, जहां वेटिंग लिस्ट 6-6 महीने चलता है, मुझे एक वीक में ही अपॉइंटमेंट देके ऑपरेशन भी कर लिया। तब दूसरे दिन जब पट्टी खुली तो मुझे कहता है व्हाट डिड यू सी, क्योंकि मैं तब इंग्लिश में ही भाषण किया करती थी, नींद में भी इंग्लिश में ही बोलती थी, क्योंकि मेंटल स्टेट इज हैप्पीनेस, वो मेंटल स्टेट जो रहता है वही रहता है। तो आई सेड के शैडो ऑफ योर हैंड। तो डॉक्टर ने मेरे पिताजी को कहा आपकी बेटी थोड़ा बहुत देख लेगी लेकिन पढ़ लिख सकेगी वो तो भूल जाओ। मैंने ये अपने कानों से सुना और सीधा बाबा के साथ कम्युनिकेशन शुरू कर दिया। अब मैंने बाबा को पकड़ा तो पहले भी था, तभी तो इतनी मेंटल स्टेट अच्छी रही थी। बाबा को कहा बालपा, आई डोंट वॉन्ट टू सी द फेसिस ऑफ ह्यूमन बींग्स, आई वॉन्ट टू रीड एंड राइट, मुझे लोगों के चेहरे नहीं देखने, मुझे तो लिखना और पढ़ना ही है। यकीन मानिए मुझे 10 महीने डार्क में रखा गया था, बिकॉज आई वॉज अनेबल टू बैर इवन ट्यूब लाइट, इतनी रोशनी भी आंखें बर्दाश्त नहीं करती थी। तो मेरे पिताजी चाय ला रहे या भाभी ला रही है, माँ तो थी ही नहीं, तो मैं उनके ड्रेस से पहले पहचानती कि साड़ी पहनी है आज लुंगी, फिर धीरे धीरे चेहरा दिखा, हाथ दिखे, ऐसे लाइक कली में से फूल बना। फिर धीरे धीरे मतलब बाबा के ज्ञान, बाबा ही सब टच कराता था कि कैसे कैसे मैं देखूं। पिताजी के चेहरे पे एक दिन मुझे आंखें दिख गई, नाक दिखा, लिप्स दिखे, मैंने तुरंत बुद्धि में आया बाबा ने टच कराया कि इतना जब आप देख सकते हो तो इतने बड़े लेटर्स आई कैन रीड। एक्चुअली विजन कॉन्सेंट्रेट करने में प्रॉब्लम था, हाँ करती हूँ शॉर्ट। तो वो देखा तो मैंने पेपर ऐसे रखे के रीड, मेरी आंख को कहा रीड दिस इज द टाइम्स ऑफ इंडिया, रीड दिस इज संदेश, रीड दिस इज गुजरात समाचार। पहली बार जब मैंने पढ़ लिया उसके बाद सीधी 12 घंटे सो गई। डॉक्टर को बताने जाते थे तब ये कहा, तो उन्होंने कहा देखो बेटे अभी और कुछ हुआ इतने ऑपरेशन के बाद तो अब फिर से रिकवरी होना मुश्किल है, डोंट स्ट्रेन। मैंने छोड़ दिया, चलो ठीक है। फिर से होता था कि नहीं मुझे पढ़ना तो है, धीरे धीरे फिर शुरू किया। फिर एक दिन पिताजी की आंख में मुझे वो काला चक्कर की दिख गई, तो मुझे हुआ अब तो न्यूज लेटर्स की हेडलाइंस दिखनी चाहिए, तो एक दिन वो ट्राई किया। मतलब आप सोचो धीरे धीरे आंखों को ट्रेन करते करते, और अभी एक आंख के बाद मैं वापस जॉब में तो गई वो नहीं, लेकिन मैथमेटिक्स की प्रोफेसर रहने के बावजूद मैंने मैथमेटिक्स में PhD भी किया। पूरे ये मेरा खुद का अनुभव है, ये नहीं कि मैं अपनी महिमा कर रही हूँ, लेकिन ये भगवान कराता है कि कैसे हम बाबा के ज्ञान से अपने आप को स्टेबल बनाते हैं और कैसे बाबा का नाम उजागर करते हैं। बाबा ने हमें इतनी मानसिक स्टेबिलिटी दी है। अच्छा, जब मन की स्थिति की बात करते हैं, हैप्पीनेस, वर्क लाइफ बैलेंस रिज्यूम कर लिया, नौकरी भी चालू कर दी, वहां भी प्रॉब्लम हर जगह, क्योंकि मैथमेटिक्स इज सच अ सब्जेक्ट वेयर यू डोंट फाइंड रिप्लेसमेंट एंड यू एक्सपेक्ट ऑलवेज योर स्टूडेंट टू परफॉर्म इक्वली बेस्ट, इक्वली गुड एंड सो ऑन, एंड यूजुअली यूनिवर्सिटी टॉपर्स आर फ्रॉम मैथमेटिक्स। तो वो जो आता है बैलेंस करने की बात है, तो वी ऑलवेज एक्सपेक्ट परफेक्शन। तो बैलेंस बनाने के लिए मैंने ये सीखा, लेट गो, परफेक्शन की बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं रखो, क्योंकि जिंदगी लुक इंटरनली एंड फॉरवर्ड एक्सटर्नली तो ठीक है, लेकिन जिंदगी का नाम दूसरा ये भी तो है, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, वो भी ठीक है। बहुत सारे गाने हैं जो हमें जिंदगी के बारे में लेसन सिखाते हैं, लेकिन अपना जीवन हमें क्या कहता है? हमें आगे तो बढ़ना ही है, लेकिन एक बात बहुत इम्पोर्टेंट यह रहती है कि जब हम अपना परफेक्शन स्टूडेंट से एक्सपेक्ट ना करें। कल परसों स्वामी भाई ने भी वही कहा ना, व्हाट इज हैप्पीनेस, दैट इज इक्वल टू इवेंट्स माइनस एक्सपेक्टेशन। आई रीडिफाइन द सेम टर्म, व्हाट इज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इक्वल टू इवेंट्स प्लस लर्निंग्स। हर जीवन की घटना दुर्घटना कुछ भी हो हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, इट एड्स टू अवर एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाट आई एम हियर बिफोर यू, अदरवाइज आई वुड हैव बीन ऑल्सो देयर। लेकिन ये शेयर करती हूँ इसलिए कि दो मिनट दीजिए ना, हमारे पास टाइम है थोड़ा। तो ये जो हम आगे चला रहे हैं अपनी गाड़ी, उससे ये हमें सीखना है कि परमात्मा का ज्ञान अगर बुद्धि में रख के हर इवेंट से हम कुछ न कुछ सीखते हैं, तो हमारा जीवन बहुत सुखद हैप्पीनेस की तरफ बढ़ जाता है। तो परफेक्शन हम छोड़ देते हैं। दूसरा अनप्लग, अनप्लग ये करना है कि जो बातें होती है वो हमारे दिमाग में हॉन्ट हुआ करती, घूमती रहती, उसको अनप्लग करना है, जस्ट अनप्लग कर दो। तीसरी बहुत इम्पोर्टेंट बात जो कि वो मेरा जीवन ही था, फिजिकल एक्सरसाइज एज वेल एज मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज इज सिनोनिम एज मेडिटेशन, दैट्स व्हाट राजयोग प्रैक्टिस यू हैव बीन डूइंग नाउ, एंड दैट आई हैव इम्बार्ब्ड इन माय लाइफ, एंड दैट इज नॉट सेपरेट। आई ऑलवेज क्रेव फॉर मेडिटेशन, इवन इफ आई गेट अप समटाइम्स लेट, आई जस्ट गिव अप सम वर्क एंड पेनलाइज माई सेल्फ एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन मेडिटेशन, बिकॉज इट इज अवर रूटीन डेली लाइफ। तो टू कोप अप विथ डेली रूटीन आई गिव प्रायोरिटी टू मेडिटेशन फर्स्ट। तो हम चाहे एम्बेसडर ऑफ इंडिया के रहे हो, तो उसकी बुद्धि में क्या आता है, प्रायोरिटी कम्स एज अ नेशनल वेलफेयर, उसको देश का भला सोचना है। ऐसे हम अगर सिंपल ह्यूमन बींग है तो हमारी प्रायोरिटी में क्या है, सारी दुनिया की सोसाइटी का तो भला सोचना है, दुनिया तो सुखद हो, लेकिन सबसे पहले खुद को भी तो मानसिक रूप से सुखी बनाना है। मानसिक रूप से सुखी बनाने के लिए हम अब मानसिक अवस्था के बारे में सोचे, तो हमारी स्टडीज में अभी काउंसलिंग का कोर्स किया, उसमें हमें 12 प्रकार के माइंड पढ़ाए गए। 12 प्रकार के माइंड जस्ट आप अभी शब्दों से ही समझ जाएंगे, क्योंकि भाई जी मुझे दो बार अलार्म दे चुके हैं। पहला है माइंड ऑफ मनमत, परमात्मा की श्रीमत होती है, हम उसमें अपना ऐड करते हैं, तो दैट कम्स एज मनमत। दूसरा आता है वांडरिंग एंड मिस्चीवियस माइंड, सारी दुनिया में घूमने चले जाते हैं, ये देखते वो देखते, कुछ अच्छा लगता कुछ नहीं, कहीं टिक्खड़ कर लेते, कहीं तूफान कर लिया, कभी मजाक मस्ती कर ली, वांडरिंग एंड मिस्चीवियस माइंड। थर्ड इज नॉलेजेबल माइंड। फोर्थ इज माइंड ऑफ क्रिएटर, नॉट ऑलमाइटी क्रिएटर, बट वी ऑल आर क्रिएटर टू वन और द अदर एक्सटेंट। अपने अपनी फैमिली की तो रचना की है, सो सिंपल फैमिली, दैट इज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर फैमिली, द ऑलमाइटी इज क्रिएटर ऑफ ऑल ऑफ अस, लेकिन वो यूनिक है, हम लोग इंडिविजुअल ऑल्सो हैव अवर ओन क्रिएशन। the mind of creator also depends how what need your family has and so on and on. So the mind of creator also teaches us something. Dusra aata hai hamara action oriented mind. Tisra aata hai stable mind. Fir aata hai victorious mind. Satopradhan mind. Satopradhan mind to hamara final goal hai. जब हमें सत्यों की दुनिया में जाना है तो हमारा माइंड तो सत्वप्रधान होना ही चाहिए. लेकिन वो होने के पहले हमें क्या होना चाहिए? केयरलेस माइंड जो है उसको डिमिनिच करना है. केयरलेस माइंड भी होता है ना, अरे डोंट बॉदर, क्या होता है, ये होता है, वो होता है, चलने दो. हाँ, एक ही मिनट में समाप्त करती हूँ. अभी लास्ट आता है नॉन अटेंटिव माइंड. इनकी बात को मैं अटेंशन दे रही हूँ, आई एम नॉट नॉन अटेंटिव. लेकिन कई माइंड ऐसे होते हैं कि अटेंशन ज्यादा नहीं देते, अटेंटिव भी नहीं रहते, यहाँ बैठे हैं लेकिन घूमते सारी दुनिया में, ऐसा भी हो जाता है. तो ये 12 प्रकार के माइंड जो है वो हम लोग हमारे साथ लिए घूमते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, वी आर अवेकेंड सोल नाउ. आत्मा जो है उनके 3 प्रकार, मन, बुद्धि, संस्कार है. तो ये मन यानी कि माइंड वो पहली बात है. अभी देवयानी बहन ने भी कहा यू नीड माइंड मैनेजमेंट, यू नीड टाइम मैनेजमेंट, यू नीड दैट एंड दिस मैनेजमेंट मैनेजमेंट मैनेजमेंट. तो दिस ऑल इज आउटकम ऑफ स्टेबल माइंड. एंड स्टेबल माइंड हैज अ इनेट क्वालिटी एज अ हैप्पीनेस. वैसे तो 7 क्वालिटीज है आत्मा की. पहली आती है ज्ञान, दूसरी आती है प्योरिटी, तीसरी आती है पीस, शांति. वैसे तो पवित्रता ही सुख शांति की जननी है. तो सबसे पहले पवित्रता रख दो, उसके 2 बच्चे सुख शांति. सुख कहाँ होता है? जहाँ प्रेम है, आनंद है. और शांति कहाँ होती है? जहाँ ज्ञान यानी कि समझ है और शक्ति है. तो सातों की सातों इनेट क्वालिटीज को हम एंड सर्कल कर लेते हैं. और ये जो दुनिया की वर्ल्डली लाइफ, मार्केटिंग वर्ल्ड, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की जो लाइफ है, उससे अपने आप को कैसे बचा लेते हैं, दैट टीचेस अस बैलेंस. जब बैलेंस की बात आती है तो मुझे छोटी थी तो सर्कस याद आता है, वो रोप वॉकर होते हैं ना, वो डंडा लेके चलते हैं. और एक बाजू मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, दूसरी बाजू स्पिरिचुअल वर्ल्ड है. क्योंकि हमारी लाइफ तो डिफरेंट है ही नहीं स्पिरिचुअलिटी से. 40 साल हुए, हमारी पूरी जिंदगी कैरियर सब स्पिरिचुअलिटी से ही आगे बढ़ा. तो स्पिरिचुअल लाइफ में एक जोकर लटक रहा है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी एक जोकर लटक रहा है, और दोनों को बैलेंस करते करते हम चढ़ रहे हैं. और अंतिम स्टेज हमारी सत्वप्रधान माइंड को पाने के लिए हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं. और एक बात और भी हमें सोचनी है कि भाई जब हम हमारे स्टूडेंट के सामने रोल मॉडल बन के खड़े थे, क्योंकि एवरी ईयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 2 गर्ल स्टूडेंट्स आर लेस इन मैथमेटिक्स, फिर भी चूंकि लेडी टीचर थी तो वहाँ पाटन गुजरात, नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी में मैं 18 साल रही, तो वो रीजन फीमेल ओरिएंटेड पढ़ाने का नहीं था. फिर भी मेरी वजह से आप यकीन मानो अगर 40 स्टूडेंट है क्लास में तो 33 विल बी गर्ल स्टूडेंट्स और 7 बॉय स्टूडेंट्स. वो इसलिए कि वहां की डोमिनेटेड प्रजा ये मानती है खेती प्रधान, कभी बारिश हुई नहीं हुई तो अगर बहू पढ़ी लिखी होगी तो टीचर की नौकरी करेगी तो घर तो चलता रहेगा, कभी बाढ़ आई तो फसल हुई नहीं हुई ये वो घर तो चलता रहेगा, वो पॉइंट से वो लोग पढ़ते थे. बट फॉर ऑल ऑफ देम आई वॉज अ रोल मॉडल. ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है. वो समझते थे, पर्सनली घर आके समझते थे कि कैसे कैसे मैडम मैनेज करती है. सबको पता था कि बहन शाम को तो ब्रह्मा कुमारी के घर ही गई होगी, सुबह में घर में बैठ के अव्यक्तवाणी पढ़ लेती थी, अव्यक्तवाणी पढ़ के बाबा का ज्ञान आगे बढ़ा के जीवन बनाती थी सारा दिन. अभी अभी भाई जी का फाइनल सिग्नल आ रहा है और तालियां भी मुझे कह रही कि मैं थोड़ा अटक जाऊं, तो फिर कभी और मौका मिला तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जीवन का नाम है बढ़ते रहो सुबह शाम. थैंक यू. ओम शांति.
बहुत बहुत थैंक्स सिस्टर. एक मैनेजमेंट का एक नया एस्पेक्ट आज आपने हमें भी और दे दिया, जिसे मुझे भी थोड़ा सा आज एक नया मैनेजमेंट का एस्पेक्ट मिला है, दैट इज स्टेज मैनेजमेंट. तो इसके ऊपर भी हम थोड़ा गौर करेंगे आगे से. बहुत अच्छा उनका हार्ट टचिंग एक्सपीरियंस रहा. और ठीक है, ये भी एक ईश्वरीय प्यार की निशानी है कि हमने ईश्वर से क्या क्या पाया और दिल में आता है कि हम सबको दे दें. ये ये भी एक निस्वार्थ भाव है, ये निस्वार्थ भाव है, ये सेल्फलेस। अब दो मिनट के लिए हम थोड़ा ट्रैफिक कंट्रोल मेडिटेशन में बैठेंगे। एक्सपीरियंस से शेयर हुए हैं हमारे लाइफ के चार एस्पेक्ट्स हैं। इस सारी कॉन्फ्रेंस में जितने भी टॉपिक रखे गए थे उन्हीं एस्पेक्ट्स को माइंड में रख के किए गए थे। इन जनरल फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। आई रिपीट, फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल। लाइफ की स्टेज के ये चार पाए हैं। जब तक ये चारों पाए आपस में इक्विलिब्रियम में नहीं है, एक भी पाया थोड़ा ऊपर नीचे अगर है तो आप समझ सकते हैं कि स्टेज बैलेंस नहीं रहेगी। इसको और थोड़ा गहराई में हमारे आदरणीय भाई साहब इसको डिटेल में लेंगे इस चीज को। अब मैं हमारे बीच हमारी राजयोगिनी बहन लाजवंती जी हैं, वो मुलुक सेंटर में एक सेवा केंद्र का संचालन भी करती हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पास डेली कई तरह के लोग आते हैं, आपको अपनी लाइफ को भी मैनेज करना है, सेल्फ प्रोग्रेस भी करनी है, सेंटर को भी मैनेज करना है और जो जिज्ञासु आते हैं उनको भी मैनेज करना है, तो आप अपनी लाइफ में बैलेंस कैसे रखते हैं केवल 7 मिनट आपके पास है।
ओम शांति। परमपिता परमात्मा, जो खुद टीचर है, डायरेक्टर है, वो हमें टीच करता है, डायरेक्शंस देता है। उनकी संतान आदरणीय मंच और हमारे उपस्थित भाई और बहनें, हमारा सब्जेक्ट चल रहा है वर्क लाइफ इम्बैलेंस। देखा जाए कि बैलेंस ही कला है। जीवन का संतुलन ही कला है। आप सर्कस देखने जाते हैं तो सर्कस सारी बैलेंस पड़ी होती है। अगर उनका बैलेंस टूटे तो जीवन का खतरा है। और यदि बैलेंस पे चलते हैं तो खुद के लिए भी मनोरंजन है, औरों के लिए भी मनोरंजन है। जहां बैलेंस टूटता है वहां मन रंज हो जाता है। तो बैलेंस बहुत आवश्यक है हर फील्ड के अंदर। वर्तमान समय हम देखेंगे, लोग जब सोना चाहिए तब उठते हैं और जब उठना चाहिए तब सोते हैं। इसको बैलेंस नहीं कहेंगे। जब खाना चाहिए तब खाएंगे नहीं और जब टाइम हो जाता है उसके बाद खाते हैं। यानी इन बैलेंस बहुत कुछ चल रहा है। ऑफिस का रोल घर में प्ले करते हैं, इसके लिए घर वाले भी नाराज होते हैं। तो बैलेंस जीवन का श्रृंगार है। मुझे एक बात याद आ रही है, ब्रदर ने कहा आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर कैसे आप मैनेज करते हो। मुझे हमारी बड़ी दादी जी का मैं आपको एक उदाहरण देगी, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटर थी, दादी प्रकाशमणि जी। हम कई बार उनके साथ बैठते थे और ज्ञान चर्चा वगैरह करते थे, चिक चेक करते थे। तो हमने उनको पूछा, दादी जी इतने लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं, 10-10 हजार लोग मिलने के लिए आते हैं, आप अपना बैलेंस कैसे रखते हो दादी जी? क्योंकि एक ग्रुप गई फिर वो बाहर जाएगी तो दूसरी ग्रुप आती है। दादी जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया और उसी ही जवाब को लेकर हम अपनी जीवन चला रहे हैं। दादी जी ने बहुत सुंदर कहा कि जब मेरे पास कोई आते हैं बाबा के बच्चे मिलने के लिए, बहुत लोग मिलने के लिए आते हैं ना, और हम मिलाते भी हैं, तो दादी कहती है उस समय मैं सोचती हूँ मैं डिवाइन मदर हूँ, मैं डिवाइन मदर हूँ। ये बच्चे आए हैं, इनको वात्सल्य देना, इनको प्यार देना, इनको ममता देना मुझ माँ का फर्ज है। और रियली दादी जी के पास जो भी जाएगा वो माँ की वासना ले ही आता था। बाहर आने को उनकी इच्छा नहीं होती थी कि ऐसी माँ को छोड़ें कैसे। आज हम माँ जगदम्बा दुर्गा आदि जी के चित्र देखते हैं, उसमें भी हमें वात्सल्य मिलता है। यहाँ तो दादी जी प्रैक्टिकल बैठी है। फिर दादी कहती थी जब वो ग्रुप चली जाती है, देखिएगा बैलेंस, जब वो ग्रुप चली जाती है तो बीच में 2-3 मिनट तो मिलते हैं ना, जब तक दूसरी ग्रुप आए। तब दादी कहती है मैं अपने उसी सोमान में आ जाती थी, अरे कुमार का तू किसकी माँ है, किसकी भी माँ नहीं, तू खुद बच्ची है भगवान की। आप सोचिए ये कितना बैलेंस है, तू किसकी माँ नहीं, तू भगवान की बच्ची है, खुद भगवान तेरा माता पिता है। मैं डिटैच हो जाती हूँ, ये डिटैच होना अटैच होना ये भी बैलेंस है। हम एक तरफ जाते हैं यहां तो अटैच हो जाएंगे खूब जो तकलीफ देता है, और यहां तो डिटैच हो जाएंगे जो भी तकलीफ देता है। दादी जी कहती थी फिर दूसरी जैसे ग्रुप आई फिर मैं आप पर अपने स्वरूप में आ जाती थी, मैं डिवाइन मदर हूं, मुझे इनको प्यार देना है, वापस उसी स्वरूप को पकड़ के उनको प्यार देना और फिर वापस उससे डिटैच होना, इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल बैलेंस। इसके लिए भगवान ने हमें बहुत टिप्स बताई है कि लॉ और लव का बैलेंस रखो, न्यारे भी बनो तो प्यारे भी बनो, यही बातें हम अपने जीवन में लेके चलते हैं। मुझे कभी कभी फील ये होता है कि हम बहने तो छोटी छोटी है, चलो अभी हमारी थोड़ी उम्र हो गई पर हम आए तो छोटे छोटे थे ना। अभी हमारे समय सब गृहस्थी लोग आते हैं जो काफी दुनिया के अनुभवी होते हैं, बहुत कुछ उनको अनुभव होता है और वो प्रॉब्लम लेकर के हमारे पास आते हैं। तो मैं उस समय सोचती थी बाबा हमने तो दुनिया देखी नहीं, ये प्रॉब्लम्स क्या होते हैं हमें तो कुछ मालूम नहीं, और ये लोग कितनी आशा लेकर के हमारे पास आते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो बैलेंस रखना पड़ता है। तब अगर उस समय मैं सोचूं मैं तो छोटी हूं मैं क्या जानूं दुनियादारी को, तो उनकी आशा खत्म हो जाएगी। उस समय हम ये नहीं सोचते हैं कि मुझे करना है, मुझे नहीं करना है, करण करावन हार आपे आप, मानक के कुछ ना ही हाथ, परमात्मा मेरे द्वारा कराएगा, यानी कराने वाला करा रहा है, करण हार हम किए जा रहे हैं। उस समय हम परमात्मा के याद से जो परमात्मा की टचिंग आती है वैसे उनको सॉल्यूशन बता देते हैं। जिस समय वो हमारे सामने प्रॉब्लम लेके आते हैं उस समय मैं बहुत यही कोशिश करती हूं कि मैं परमात्मा के याद से उनकी प्रॉब्लम को सुनूं, क्योंकि अगर बॉडी कॉन्शियस से सुनेगी तो मुझे वही आ जाता है मैं छोटी हूं, मुझे कुछ अनुभव नहीं है दुनिया का। पर जब भगवान के याद से सुनते हैं तो मैं सोचती हूं कि ये किसको सुना रहे हैं, लाजू तेरे को सुना रहे हैं या परमात्मा को सुना रहे हैं। मैं निमित्त सामने बैठी हूं और उनका प्रॉब्लम सॉल्व कौन करेगा, मैं करूंगी या वो करेगा, वो ही करेगा। तो उस समय परमात्मा की याद राजयोग एक ऐसी विधि है जिससे आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। उस समय हम याद में रह करके प्रॉब्लम सुनते हैं, याद में रह करके परमात्मा को आगे रख करके हम पीछे, भगवान आगे, और उनको जो कुछ है वो बता देते हैं, भगवान की कृपा से सब ठीक होते हैं, सब ठीक होते हैं। क्योंकि मैं नहीं कर रही हूं, जहां मैं और मेरा आया ना वहां सब फेल होता है। तो ये भी जीवन का बैलेंस रखो, मैं मेरा कुछ नहीं। हम गीत भक्ति में गाते थे, मैं मेरा कुछ नहीं सब कुछ है तेरा। तो जब हमारा मैं और मेरे का त्याग होता है, बैलेंस ऑटोमेटिकली आता है। जहां अहम और वहम का त्याग होता है, अहम से इंसान फूलता है पर फलता नहीं है। तो जहां अहम और वहम पैदा हो गया, वहां बैलेंस टूट जाएगा, हैप्पीनेस खत्म हो जाएगी। तो टाइम तो होता जाता है, मैं सिर्फ दो बातें आपको सुनाऊंगी जो मुझे भगवान ने सुनाई है और मैं आपसे शेयर कर रही हूं। पहली बात तो हमको भगवान ने ये सुनाया, बच्चे सवेरे जल्दी उठो। ये माँ बाप से भी सुनते थे जल्दी सोना जल्दी उठना, पर वो प्रैक्टिकल नहीं होता था। भगवान ने हमें कहा अमृत वेला उठो। अमृत वेला सचनाओ वडियाई विचार, अमृत वेले उस परमात्मा की महिमा करो, अमृत वेला उनके साथ मिलन कीजिए, तो उसकी क्वालिटीज आपके पास आ जाएगी। तो परमात्मा तो सब कुछ बैलेंस से चलता है ना, इतनी दुनिया बैलेंस नहीं चल रही है ना। ये दुनिया बनाना बना के फिर चलाना बस उसी का ही काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। तो वो क्वालिटी आपके पास भी आएगी। दूसरा, परमात्मा ने कहा हमें कि अमृत वेला याद करके स्नान आदि करके ज्ञान अध्ययन करे, ज्ञान पान करे, जिसको हम कहते हैं हमारी भाषा में भगवान की मुरली। हम उस मुरली का अध्ययन करते हैं, जिस मुरली के अंदर बहुत सारी बातें हमारे सब सॉल्व हो जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और तीसरे में भगवान ने हमको कहा कि जब जो भी हमारे पास आते हैं तो सब मुरली का अध्ययन करते ही हैं, मुरली पान करते ही हैं, पर जब घरों में जाते हैं, काम धंधों में जाते हैं, व्यापार बिजनेस में जाते हैं, तो भगवान ने एक अच्छा संकल्प दिया कि जब जाते हो दुनिया के बीच में, तब सिर्फ ये नहीं सोचो कि मैं व्यापारी हूं, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, मैं व्यवहारी हूं, नहीं, व्यवहार के साथ व्यापार के साथ मैं परमार्थी भी हूं। परमार्थ रखो, परमार्थ नहीं रखोगे तो बैलेंस टूटेगा। मैं सेवाधारी भी हूं, जीवन सेवा से संवरती है। और उसके बाद परमात्मा ने कहा कि जब आप भोजन खाते हो तो दिया हुआ तो उनका ही है ना, वो ही देता है। कि आपको लगता है हम कमाते हैं और हम ही रोटी बनाते हैं, नहीं, निमित्त आप हो। वो हमें रोज खिलाता है, जरा उससे याद करके थैंक्स करके खाओ, खुद ब खुद आपके माइंड में बैलेंस हो जाएगा, विचारों का पॉजिटिव में रहोगे। और जब बहुत लोगों के बीच में जाते हो, व्यापार धंधा आदि जो भी कुछ करते हो, तो भगवान ने कहा किसी की ये 6 फुट की 5 फुट की बॉडी को नहीं देखो। ये भगवान की बातें बता रही हूं मैं, मेरी नहीं बता रही हूं, इतना याद रखना। भगवान ने कहा, परमात्मा ने कहा, बच्चे आपको ये बॉडी कॉन्शियस से दूर जाना है, ये तो मीडिया है, इससे तो आप पार्ट प्ले करते हो, आप ये नहीं हो। तो उन्होंने कहा जिसको भी देखते हो आप यहां देखिए। कहां देखेंगे? ब्रुकुट के बीच में, कि ये आत्मा है, तो आपके अंदर वो रूहानियत वो आत्मीयता आ जाएगी। जहां आत्मीयता आई वहां हैप्पीनेस है। और लास्ट में भगवान ने कहा, लास्ट पॉइंट आपको मैं बता देती हूं, कि लास्ट में उन्होंने कहा कि जब रात होती है, जब आप सोने जाते हो, तो एक बार फिर से अपने आप को आत्मीयता में लाएं कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, और उसे गुड नाइट करके सारे दिन का समाचार उन्हें दे करके और उन्हें थैंक्स बोलिए, प्रभु थैंक्स,
बहुत बहुत थैंक्स।
तो आपका जीवन खुद ब खुद संवर जाएगा और जीवन बैलेंस से चलेगा और खुशियों से चलेगा। ओम शांति।
बहुत बहुत थैंक्स लाजवंती बहन, आपका आपने बहुत सार में ज्ञान को सबके सामने अपने अनुभव से रखा। समय की सीमा को देखते हुए दिल तो मेरा भी बहुत कर रहा है कि 30 साल का मेरा अनुभव मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मेरा भी एक बहुत सुंदर अनुभव ऐसा है जैसा हमारी सिस्टर ने बताया, एक्सीडेंट हो गया, मैं भी समुन्द्र में डूब गया था और 30 साल पहले की बात है। कैसे निकला ही था तभी आज आपके सामने बैठा हूं, अदरवाइज 30 साल पहले मैं ओम शांति कर चुका था सबको। एक बहुत सुंदर अनुभव है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे आदरणीय भाई साहब हैं, हम उनसे सुनना चाहेंगे। अभी इससे पहले कि मैं माइक आपको हैंड ओवर करूं, आई वुड लाइक टू टेक परमिशन फ्रॉम द सेकेंड सेशन अवतार सिंह जी, we'll encroach 10 minutes to your time now with your permission because we would like to listen from adarniya bhai sahab. So bhai sahab, 11:10 tak ka time aapke paas hai, please feel free to share your experience how we can keep balance in our work life. Over to you bhai sahab.
Om shanti. आप सबके साथ मैंने भी सुना कि खुशी से कैसे जीना, खुशी कैसे प्राप्त करना। आप 4 दिन से भी जो भी सुन रहे हैं तो उसमें भी यही बात थी कि भाई सुखी कैसे रहे, खुशनुमा कैसे रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि हम दुनिया के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा ही स्वार्थी है या लोभ है जो हम ही खुश रहे, या ऐसा भी कोई प्लान है जो जिन्होंने भी सुनाया कि आप खुश रहेंगे तो आप यही खुशी दूसरों को देंगे। तो ऐसी आशा रखते हुए मैं समझता हूं इन सब ने अपना अनुभव सुनाया है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब सन 1960 में, जैसे आज आप आए हैं, मैं यहां आया था, पिताश्री जी से मिला। ज्ञान तो बहुत अच्छा है, आपने वहां भी सुना है यहां भी सुना है, परंतु मैंने पिताश्री जी से पूछा तो ज्ञान तो बहुत अच्छा है। मैं इंजीनियर प्रोफेशन में था, बहुत बड़े फैक्ट्री जिसका नाम था उन दिनों में HMT, जहां फ्रेंच, जर्मन, दूसरे सब विदेश के सब थे, उनके साथ काम करते थे। तो स्वप्न देखता था मैं भी कुछ ऐसा बन जाऊंगा। फिर भी जब मैंने देखा पिताश्री जी ने तो सब कुछ छोड़ करके, डायमंड मर्चेंट थे उन जमाने के, और राजयोग सिखा रहे थे, तो मैंने पूछा कि मैं तो खुश हूं पर अब मुझे क्या करना है बताइए, क्योंकि आप सब कुछ छोड़ के आए तो कुछ तो होगा। तो जिसमें सारी दुनिया खुशी देख रही है उसको छोड़ के आप यहां आए तो वो क्या चीज है जो मुझे आप बताइए, भी मुझे क्या करना है। तो उन्होंने मुझे कोई ज्ञान तो नहीं सुनाया उस समय पर, बस एक छोटा सा टोटका जिसको कहते हैं, बच्चे दुनिया में सब लोग अपनी खुशी के लिए ही जीते हैं, सुबह से शाम तक हम खुश कैसे रहे यही सोचते हैं और यही करते हैं, तो तुम भी वही करेगा। परंतु उससे ज्यादा आपको खुशी चाहिए, क्योंकि सबने बताया कि भाई एक तो खुशी है जो भाई खाया तो बहुत अच्छा लगा, वो पूरा हो गया, पहने अच्छा लगा। तो हर चीज हम देखते हैं दुनिया में खुशी का एक लिमिट होता है, तो उसके बाद फिर वापस जैसे है वैसे फिर मेहनत करनी पड़ती है। तो पिताश्री जी ने मुझे एक छोटी सी ये बताई, बच्चे कोशिश करना कि दूसरे कैसे खुश हो, ये तुम सोचेगा तो आपकी जिंदगी उनसे ज्यादा खुश रहेगी, और वो खुशी जो है वो टेम्पररी ना हो करके, जो लोग कहते हैं ना जब जाते हैं इस शरीर से, तो उस समय पर भी कहते हैं कि भाई उनके साथ कुछ जाता है, तो इसीलिए मरने के बाद भी हम लोग उन आत्माओं को भी कुछ दुआएं देते हैं भाई कुछ रहे कुछ रहे। तो इसका मतलब हम सिर्फ यहां के लिए भी नहीं, आपको पहले से ही बता दिया है कि आप शरीर नहीं आत्मा है, तो कुछ ले जा भी सकते हैं इस दुनिया से, वो क्या चीज है वो भी एक खुशी है, जो इस समय पर भी हम खुश रहेंगे और वो खुशी हमारे साथ भी जाएंगे, तो उसका सिर्फ नाम अलग है। जो प्रकाशमणि दादी जी की बात नाम सुनाया इन्होंने, इस संस्था को एक विश्व संस्था बनाया उन्होंने, तो वो मैंने जहां तक देखा था 18 घंटा जागती थी, कब सोती थी मालूम नहीं पड़ता था। मैंने एक दिन पूछा, दादी जी तो आप इतनी मेहनत कर रही है तो कर क्या रही है, लोग आते हैं मिलते हैं खुश होके जाते हैं ये सब हम देख रहे हैं, पर आपका अंदर क्या लक्ष्य है? तो उन्होंने बताया, तो एक तो मैं ध्यान रखती हूं कि भाई वो मेरे से खुश होके जाए, अभी तक मैं खुश हूं या खुश होना है उसके लिए करते थे, परंतु हमारी दादी जी ये कहते हैं कि जो भी मेरे से मिलने आए तो वो मेरे से खुश होके जाए, परंतु उतना ही नहीं है, जो जाते हैं वो जाते जाते दिल से दादी जी को दुआएं देके जाते हैं, मेरा वो है कमाई, मैं खुश हूं, मैंने उनको भी खुश करा दिया, वहां तक की सीमित नहीं है, आपने इतनी कुछ करा दी किसी को जो वो दिल से कहे आपने तो आज मेरी, तो वो जो दिल से जो दुआएं होती है वो हमारे साथ भी जाता है, सिर्फ यहां नहीं हमारे साथ जाता है। तो आप जिस स्थान पर आए हैं तो बहुत कुछ आपने सुन लिया है कि आप खुश कैसे रहना वो भी सीख लिया है, और मुझे विश्वास है आप सब खुश होके जाएंगे और खुशी से रहेंगे, पर मैं आपसे आशा करता हूं, क्योंकि वो लोग इंतजार कर रहे हैं कहां गए भाई, कहीं मलेशिया बाली यहां नहीं है, माउंट आबू गए हैं, ब्रह्मा कुमारी इसका इसमें गए हैं, तो जब आप वापस आएंगे तो ये कैसे होंगे, वो सब वेट कर रहे हैं इंतजार कर रहे हैं। तो आपसे हमारी नम्र निवेदन है, जो आप आबू में आए आराम से रहे खुशी से रहे, हमारी बहनें भाई सब यही देखता रहे कि भाई आप खुश रहे, आपको सब सुविधा मिले, यहां आनंद से रहे, तो आपको जो खुशी मिली है तो जब आप वहां जाएंगे आपके फेस से तो वो खुशी दिखना चाहिए, तब कहेंगे आपके यहां आने की सफलता हुई। भले आप वर्णन नहीं करेंगे पर आपको कुछ देखते हुए कोई और चीज मिला है हमको, वो कमाई तो सब जानते हैं दुनिया में, परंतु यहां जो तीन चार दिन आप लोग रहे तो आपको एक अलौकिक खुशी मिली है, आपके चेहरे में वो चमक दिखाई देता है। तो आपको देख करके भी उनको प्रेरणा आएगी कि अल्पकाल का सुख अलग है, सदाकाल का सुख एक अलग है। तो आप वो अभी जानकर जा रहे हैं कि कुछ केवल हमें नहीं रहना है, हमारा परिवार ही नहीं रहना है, जो भी आत्माएं हमारे संपर्क में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, उनको भी आपकी खुशी दिखाई दे, मुस्कुराते हुए, यू स्माइल वर्ल्ड विल स्माइल। तो इसीलिए आप देखते हैं हमारी सब बहनें खुश हैं, इन्होंने यही सीखा है, खुश रहना माना दूसरों की खुशी आप दे सकते हो, हम ही खुश नहीं है तो हम कैसे कि दूसरों को खुश करेंगे। तो आपसे हमारी ये एक आशा तो जरूर रहती है कि जो भी आप यहां आए हैं तो जैसे हमको ईश्वर ने ये सिखाया और हमको खुशी दी कि दूसरों को खुश करते हैं तो ही आप खुश है, वो खुशी है जो सच्चा खुशी है। तो हम आपसे यही आशा रखेंगे कि इसके लिए थोड़ा सा मेहनत दो बात की है, एक है जो इन्होंने बताया कि आपको 4 बजे रिक्वेस्ट किया कि भाई आप भी थोड़ा सा ध्यान कीजिए, तो ये है हमारा सीक्रेट है। हम सबके अंदर वो जो खुशी है वो है हमारे अमृत वेला, हम केवल ईश्वर को याद करते, कोई व्यक्ति नहीं, कोई गुरु नहीं, क्योंकि आखिर देने वाला वो है। तो एक आंख भी गया तो कोई नहीं दे सकता है, बहन जी ने 1000 बार कहा भगवान से भगवान से भगवान से आया, सच्ची बात है। जो कुछ भी हम है इस समय पर वो केवल उसी की करामत है, बाल गया वापस नहीं आ रहा है, देखिए वो दिया हुआ वही है, सब कुछ ईश्वर ही देता है। कहने वाले कह के चले गए करण करावनहार वो है, पर हम समझे नहीं, हम तो लगे हुए हैं, मैंने मकान बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, सब कुछ, परंतु ईश्वर हमारे साथ है और सब कुछ आपके साथ रहेगा। दूसरी बात, अनुभव ही जीवन है। तो अनुभव दो प्रकार से आता है, ये तो एक तो हाथ जला के आ जाता है, दूसरा जो है बहने हमारे हजारों ऐसे सेवा केंद्र आपके घर के आसपास बना के रखा है, केवल इसीलिए है जो परमात्मा ने हमारे कान में कुछ बातें कही है, हमको मालूम है गुस्सा आता है, नहीं करना चाहिए, पर कोई ये नहीं सिखाता है कि भाई कैसे जीते उसको, कैसे गुस्सा ना करे, खुश रहे, खुशी दे। तो उसके लिए एक मुरली जिसको कहते हैं, क्लास जिसको कहते हैं, 10-15 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगता है, तो वो भी आप अपना जीवन का एक अंग, वो आपके लिए जैसे ये शरीर को भोजन चाहिए ही चाहिए, तो ऐसे आत्मा के लिए केवल 10-15 मिनट आप आज के दिन के लिए कोई, उसको चिंतन कहते हैं हम, तो वो आप कर लेते हैं तो समझना कि आपका जीवन ही दूसरा हो जाएगा, अभी तक का जो जीवन और जो बाकी जीवन आपका होगा वो समझिए एक ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान आप सब लेकर के जा रहे हैं। ऐसे आशा करते हुए मैं आप सबको दिल से प्रणाम करता हूं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने तो 7 मिनट बचा दिए हैं, बहुत बहुत थैंक्स आपका। इतने सार में खुश रहने के जो टिप्स आपको दिए हैं, मैं समझता हूं कि बहुत सिंपल टिप्स हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर इसको अनुभव करके देखें। मैं खुश कैसे रहता हूं, मैं एक छोटा सा सीक्रेट आपके साथ शेयर करूंगा। मैं रोज सुबेरे उठ करके, जैसे भाई साहब ने कहा ना, हम अमृत वेला 3:30 बजे उठते हैं, और मैं सुबेरे 3:30 बजे उठ करके बाबा के सामने बैठ करके 5 केले रोज खाता हूं। आप भी खाएंगे, उससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, मेंटल हेल्थ भी, फिजिकल। 5 केले, आजकल तो केले सारे साल मिलते रहते हैं, खाएंगे ना आप केले? 5 केले, कोई आपकी डाइजेशन खराब नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। आपने पूछा नहीं कौन से केले, 5 केले हैं। मैं अकेला, मेरा बाप अकेला, आए अकेले, जाना अकेला, और इस दुनिया में मेरा पार्ट यूनिक अकेला। ये 5 केले आप रोज खाइए। मैं अकेला, मेरा बाप अकेला, आया अकेला, जाना अकेला, और इस दुनिया में मेरा पार्ट अकेला। मैं अकेला हूं। जैसे कल रात को आपसे बताया, मेरी फैमिली है, मेरा पोता वेट कर रहा है, फोन आ रहा है कि दादू कब आओगे आप। मैं अकेला, ठीक है। तो ये छोटी सी टिप्स आपके साथ शेयर की। अब अवतार सिंह जी भी आ गए, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट साइलेंस में हम बाबा की याद में बैठेंगे, उसके बाद आप यहीं बैठे रहिए, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा। ओम शांति।
संग संग रहे।